ओम शांति। दादी जी की स्मृति में दादी जी की हम हर पल खो जाएं, मीठी मीठी यादों में दादी जी की हम हर पल खो जाएं। विश्व वंदनीय दादी माँ गाती सबकी है जुबां, मेरी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी दादी हमारी दादी। यादों में दादी जी की हम हर पल खो जाएं। प्यार पालना बेहद की है, शिक्षाओं से रहमत दी है। इस यज्ञ का कुशल प्रशासन किया, नियमित निर्माणता निर्मल वाणी से चलाया। मीठी मीठी यादों में दादी जी की हम हर पल खो जाएं। विश्व वंदनीय दादी माँ गाती सबकी है जुबां, मेरी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी दादी हमारी दादी। इस बगिया की बन के माली, सब फूलों की रखवाली, सबको एक ही सूत्र में पिरो के रखा। बाबा आँखों में बसा, दिल में नारायणी नशा। मीठी मीठी यादों में दादी जी की हम हर पल खो जाएं। विश्व वंदनीय दादी माँ गाती सबकी है जुबां, मेरी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी दादी हमारी दादी, मेरी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी दादी हमारी दादी।
ओम शांति। जैसे दादी जी का गीत युग रतन भाई के द्वारा सुनकर आप आनंदित हुए, वैसे ही दादी जी जहां भी जाती थी सबको आनंदित कर देती थी। गीत सुन के ही मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही थी, क्योंकि जब से वे मधुबन में आई मैं भी यही हूं। बहुत समीपता रही। आज दादी जी का 17 साल पूरे हो गए। पुण्य दिवस, स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। हमारा मनाना माना उनके जीवन से कुछ सीखना। मैं दोनों बातें आज आपके सामने करूंगा। दादी जी से हम क्या सीखें? केवल कहानियां सुनना नहीं है, सीखना है। और आज की मुरली की कुछ प्रेरणाएं, दादी जी बहुतों को तो पता है कि संसार की ऐसी महान आत्मा जिन्हें भगवान और ब्रह्मा बाबा दोनों बहुत प्यार करते थे, प्यार ही नहीं सम्मान करते थे, ये हमने खुद देखा। बहुत सम्मान की भावना से, दृष्टि से बाबा उन्हें देखते थे और उनसे बात करते थे। सृष्टि के असरत्नों में से एक वे भी हैं। यज्ञ के प्रारंभ में ही आ गई और जैसे ममा का चमत्कारिक रूप था बाबा के सामने, वैसे ही दादी का भी। आते ही बाबा ने दादी को भी बहुत टाइटल देकर बहुत आगे बढ़ा दिया, फिर सेवाओं में भेज दिया। आपको थोड़ा सा सुना दूं। बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा जब यहां थे, एक हफ्ता पहले ही दादी पार्टी लेकर मुंबई से बाबा से मिलाने लाई थी। बाकी कहानी और भी सब आपको सुनाएंगे। कैसे बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने उन्हें अपनी शक्तियां ट्रांसफर की थी, हाथ में हाथ देकर। कईयों के मुख से शायद आप सुने आज, बाबा के समय दादी जी आई। देखिए, ब्रह्मा बाबा हमारे लिए तो बाप है हमारा, लेकिन इस सृष्टि की सबसे महान तपस्वी आत्मा थे वे। शास्त्रों में उनको ही आदि योगी कहा गया है, महादेव को कहा वैसे तो, पर वो उनकी ही तपस्या का स्वरूप था। बाबा को यह आभास था कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो दादी जब पार्टी लेके जाने लगी 3-4 दिन पहले, तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची थोड़ा दिन और रुक जाओ, दीदी मनमोहिनी यहां नहीं है, वो गई हुई थी बाहर। दीदी मनमोहिनी नहीं है, यज्ञ की कंट्रोलर थी दीदी उस समय, इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था, दीदी वहां गई थी। तो दादी ने कहा ठीक है बाबा, पार्टी चली गई और दादी यहां रह गई। उन दिनों में शायद 5 दिन रहे होंगे, बाबा ने दादी को यज्ञ का सारा कारोबार समझा दिया। हर डिपार्टमेंट में ले गए, ऐसे कंस्ट्रक्शन चलता है, ये अनाज का स्टोर है, ऐसे किचन चलता है, ये फाइनेंस है, सब दिखा दिया और सिखा दिया। और फिर तो बाबा व्यक्त हुए। दादी को ही चीफ बनाया दादी और मनमोहिनी दीदी, और बहुत अच्छी तरह से इस यज्ञ को उन्होंने न केवल संभाला लेकिन बहुत आगे बढ़ा दिया। हम तो उनकी सेवाओं की उमंग देखते थे सदा ही। हमेशा कुछ ना कुछ करना और कराना है सभी से, जो आज की मुरलियों में भी था, उमंग उत्साह। हम लोग हंसी में कहा करते थे, दादी न खुद चैन से बैठती है न दूसरों को बैठने देती है, प्यार से बहुत समीपता रही मेरी तो खास किचन में होने के कारण। जब दादी चीफ बनकर आई, आपको बता दूं किचन के नेक्स्ट डोर एक बड़ा रूम था, रूम क्या कहें, हॉल जैसा था, जिसमें आठ बहनें सोती थी। आठवां नंबर दादी का था। सोचो जो चीफ बन के आई वो सात के बीच सोती थी, जगह इतनी नहीं थी यज्ञ में, लेकिन बहुत खुशनुमा, सबके साथ मिल के चलने वाली, सबको मिलाने वाली। तो दादी की तो बहुत विशेषताएं हैं, मैं उन पर आता हूं धीरे धीरे। आज बाबा की मुरली से सभी ने बहुत अच्छी प्रेरणाएं ली हैं। प्रकृति भी बाबा के पास जा रही है, और दूसरा कौन जा रहा है, दूसरा समय, क्योंकि हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। प्रकृति को भी सफाई करनी है, सफाई माना इस सृष्टि की सफाई। प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ लगेंगे और सृष्टि की सफाई करेंगे देवताओं के लिए। कभी बाबा कहते थे प्रकृति झाड़ू लगाएगी देवताओं के लिए, तुम्हारे लिए। तो हम सब ये प्रेरणा लें कि ये समय अब तो और भी पहुंच गया। तब बाबा कहा करते थे प्रकृति को ऑर्डर दें, अभी मुझे कहीं से सूक्ष्म और गुप्त मैसेज मिला, बाबा ने प्रकृति को ऑर्डर दे दिया है, अपना काम चालू करो। बरसात से ही कर दिया है, पर बड़ा काम उसका होगा भूकंपों के द्वारा, अर्थक्वेक्स के द्वारा। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु सब मिलकर परिवर्तन का महान कार्य करेंगे। आशंका है, मुझे अनुमान भी है कि इसी वर्ष प्राकृतिक प्रकोप में कोई बड़ा प्रकोप दिखाई देगा इस सृष्टि पर। हम सभी को केवल ये बात सुननी और जाननी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रकोपों के समय संसार को मदद करने के लिए, दुखी और पीड़ित आत्माओं को मदद करने के लिए, जो आज भी था, हमें सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। आज बाबा ने संकल्प और समय के खजाने की बात दोहराई है। फिर से एक विशेष चीज पर मैं सभी का ध्यान दिलाता हूँ। दादी बहुत दिलाया करती थी, जो मुरलियों में आता था उस पर चर्चा होती थी, उसका सार है हमें प्रकृति का मालिक बनना है। सभी स्वमान को भी बढ़ाएं और कुछ अभ्यास भी करें, ताकि हम सब प्रकृति के मालिक बन जाएं। इसके कई फायदे होंगे। प्रकृति हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी, क्योंकि पानी की, अन्न की तकलीफें हो जाएंगी, लेकिन प्रकृति हमें सब कुछ दिया करेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आप में से बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, स्वमानधारी बैठे हैं, अच्छे योगी बैठे हैं, वो ध्यान दें, अनेक बार हमें अपनी शक्तियों के द्वारा प्रकृति को शांत भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होगा अनेक बार कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी, कुछ भी नहीं बचेगा। यहां बचना तो है, जो शास्त्रों में दिखाया कि प्रकृति भी सागर में समा गई, वो सीन हमें दिखाई देंगे। ऐसे में बाबा की ऐसी महान आत्माएं प्रकृति को संकल्प देकर ऑर्डर देकर शांत करेंगी। तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, समय हमारा इंतजार कर रहा है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, अपनी महान स्थिति को बनाना है। दादी जी में पहले से ही श्रेष्ठ पवित्रता के संपूर्ण संस्कार थे। जब दादी विदेश गई पहली बार 1977 में, तो वहां अनेक लोग बाबा से एक प्रश्न पूछते थे, पत्रकार भी आते थे, पूछते थे व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर चीयरफुल फेस, आपके इस मुस्कुराते हुए चमकते हुए चेहरे का रहस्य क्या है। दादी के दो उत्तर होते थे, एक तो प्योरिटी, दूसरा भगवान का मिलन। लोग सोचते थे भगवान का मिलन, इस बात को लोग कल्पना जैसी मानते हैं ना, पर हम सभी इस मिलन का रोज सुख पा रहे हैं। तो हम सब भी दादी के जीवन से ये प्रेरणा लें कि हमें अपनी पवित्रता को बहुत श्रेष्ठ करना है। एक अनुभव सुना देता हूं जो मैंने पिछली कई आज के दिनों में दो चार बार सुनाया होगा, आप भी सुन लें, बहुतों ने नहीं सुना होगा। दादी सभी को पीस पार्क में पिकनिक पर बहुत ले जाया करती थी, और हम लोग जो मधुबन निवासी हैं उनको तो बहुत चांस मिलता था, जब ऑफ सीजन होता था तो हर हफ्ते ही कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाते थे, फुटबॉल का खेल होता था उन दिनों, क्रिकेट तो नहीं था। तो विदेशी थे 500, सभी को लेकर हम सब पीस पार्क गए, खेल होते रहते थे, भोजन वहीं जाता था। एक अंग्रेज भाई दो चप्पले हाथ में लिए हुए बहनों के पास जा रहा है, बहनों की चप्पल थी, ये चप्पल किसकी है? आप सोचेंगे इसमें क्या खास बात हुई, ये चप्पल किसकी है। दादी के आगे वो लज्जा से गुजरता नहीं था कि भाई दादी के आगे चप्पल लेके कैसे जाऊं, पर दादी के साथ रहने वाले ने किसी की देख लिया किसी ने कि ये चप्पल तो दादी की है, कहाँ लिए जा रहा है, उठा के जा रहा है दादी की चप्पल। सोचेंगे ना मनुष्य से। उसने कहा मैं ढूंढ रहा था ये चप्पल किसकी है, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो किसी भी चीज के वाइब्रेशंस को जानने वाला था, शायद उसके पास कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था। उसने कहा, जब उसको तो पता लग गया कि दादी के, उससे पूछा तुम क्यों लिए घूम रहे हो, कि जब मैं ये चप्पलें उठाई मैंने देख लिया था ये किसी ऐसे व्यक्ति की चप्पलें हैं जो इस सृष्टि पर संपूर्ण पवित्र है। ये वहां उसने बताया। हम लोगों को तो इन चीजों का पता नहीं होता था, हमने तो सुना तब, बाद में तो पता चला कि जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे वस्त्रों में, हमारे हैंडकरचीफ में, हमारे बैज में, हमारी घड़ी में, हमारे शरीर के अंग अंग में फैले रहते हैं। दूसरी बात भी सुना दूं, आपको आनंद होगा। महामंडलेश्वरों को बुलाया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, ओम शांति भवन में, 83 से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती रही। दादी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती थी, दादी को बहुत रुचि थी कि सन्यासियों की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की सेवा की जाए, उन्हें भी बुलाया जाए, बुलाते थे। तो एक कॉन्फ्रेंस में, ये बात शायद 85-86 के आसपास की है, बहुत सारे महामंडलेश्वर आए थे, शायद 18, शंकराचार्य भी थे दो, तो पांडव भवन का अवलोकन करा रहे थे उन्हें। छोटा ही था पांडव भवन, तो अभी भी आप जो देखते हैं शायद इससे भी छोटा रहा हो तब। तो दादी खुद दिखाने के लिए चल रही थी, और दादियां थी, मनोहर दादी रहती थी, चंदमेन दादी थी, निर्वैर भाई, आनंद किशोर दादा होते थे, सब साथ चल रहे थे। तो जब मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो एक बुजुर्ग महामंडलेश्वर ने दादी का हाथ पकड़ा। भाई दादी ने सोचा इसको सहारा चाहिए, सारा हॉल दिखाया, चित्र आदि तो हैं उसमें, वो सब एक्सप्लेन किए, आए फिर आकर हिस्ट्री हॉल में बैठे सभी, वो भी सब बैठे और अपने भी लोग बैठे। उसने कहा, अनुभव सुनाया, फिर आप आनंदित होंगे और प्रेरित होंगे। उसने कहा, आज मैंने अब घूमते हुए जानबूझकर दादी का हाथ पकड़ा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस आए, मुझे लगा जैसी पवित्रता दादी में है ऐसी देवताओं में भी नहीं है। सबके बीच बताया उसने, क्योंकि सन्यासी आदि जो हैं पवित्रता के लिए संघर्ष करते हैं, इच्छाओं को कामनाओं को दबा के रखते हैं, हमारी प्योरिटी बहुत नेचुरल, कुमार उधर कुमार बहुत बैठे हैं, बिना योग बल के किसी में पवित्रता की शक्ति नहीं आती। जिसको भी पवित्रता से अपने जीवन का श्रृंगार करना है उससे योग तो बढ़ाना ही होगा, कम से कम 4 घंटे, और उस योग में 5 स्वरूपों के अभ्यास को विशेष ध्यान देना है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, हमारा हर स्वरूप पांचों बहुत पवित्र हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। उस स्वरूप को हम सामने लाएंगे तो उनके प्योर वाइब्रेशंस हमारी प्योरिटी को बढ़ाएंगे। मान लो हम याद करते हैं अपने देव स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को, उसको सामने ले आए, जैसे हमारे सामने खड़ा है, उसके वाइब्रेशंस हमारे में आने लगेंगे। बस ये संकल्प देना होता है, ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, तो प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। दादी जी देखो स्वयं उनकी महिमा का गुणगान भगवान करते थे, ऐसी तो बहुत कम आत्माएं हैं ना संसार में जिनका गुणगान स्वयं भगवान करे, जो गुणों का सागर है। यहां बैठे हुए ही बाबा ने उनके 3 गुणों का बखान किया था, वतन से भी एक बार मैसेज दिया था, दादी जी में बहुत निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मलता है। निर्मलता एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विशाल मीनिंग होता है निर्मलता का। निमित्त और निर्माण को हम सब सुनते हैं और जानते हैं, लेकिन किसी का चित्त निर्मल हो जाए, चित्त निर्मल अर्थात सभी के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी और शुभ भावनाएं हो जाएं, मल मैल मन का पूरी तरह नष्ट हो जाए, वाणी भी निर्मल हो जाए, बुद्धि भी निर्मल हो जाए, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है। जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है वो इस चीज पे बहुत ध्यान देंगे। हम भी दादी की तरह निमित्त निर्माण और निर्मल बने। आज बाबा कह रहे थे बहुत अच्छी बात, टचिंग होती है हर समय बच्चों को, देखो बाबा ने कितना अच्छा एक महावाक्य सुनाया, हम उसे रियलाइज करें। बाबा की तो जिम्मेदारी है सबको संपूर्ण बना कर ले जाना। बाबा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करता है। बाबा की जिम्मेदारी है सभी को सुखी रखना, अपने बच्चों को जैसे आप माँ बाप रखते हैं। वो हर समय हमें मदद करता है, भूलेंगे नहीं। बाबा की नजर हर समय हम पर रहती है। जब भी वो देखता है इस बच्चे के सामने ये माया आ गई, इस बच्चे के सामने ये दुविधा आ गई, ये समस्या आ गई, तुरंत समाधान टच करता है। स्वीकार कर लें सत्य को, बस हम बुद्धि को क्लियर रखें। दादी की एक और बात सुना दूं। दादी जब भी कहीं बाहर जाती थी, बाबा के कमरे में जाती थी, हम सब बाहर खड़े होते थे छुट्टी के लिए, हमेशा आकर सुनाती थी, बाबा ने आज मुझे ये कहा। जैसे क्लियर बात होती थी बाप दादा से दादी की। ये उनकी स्वच्छ और क्लीन बुद्धि का प्रतीक था। बहुत क्लीन रखा अपने को। हम सब जानते हैं जो किसी बड़ी और विशाल संस्था की चीफ हो उसके सामने कितनी बातें आती होंगी। खेल तो नहीं है ना। आप सबको एक परिवार चलाने में भी कई कठिनाइयां आती हैं। कुमार अकेले रहते हैं, उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतने सब सेंटर्स, इतनी सारी टीचर बहनें समर्पित, समर्पण का अलग चीज है। उनके जीवन की जिम्मेदारी होती है बाबा पर, निमित्तात्माओं पर। उन्हें कोई कष्ट होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ती है, उनकी स्थिति बिगड़ती है तो हमारा ये पावरफुल संस्थान कमजोर होता है। दादी ने सभी को बहुत अच्छी तरह से संभाला, तो कितनी बातें आती होंगी। कोई पूछा करते थे दादी से, कई बार पूछा है टीचर बहने, बड़ी बहने जो होती थी उन दिनों वो पूछती थी, दादी आपके सामने भी तो बहुत बातें आती हैं, क्या ध्यान रखती हो, क्या करती हो। उत्तर सुने जो सबको करना है और आप में से कई करते हैं। माताओं का ये संस्कार होता है करने का। मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं मातृशक्ति को भी। दादी दादी बोलती थी, दादी अपने को मैं शब्द यूज नहीं करती थी प्राय, जैसे बाबा मैं शब्द यूज नहीं करता था। बाबा अपने को भी बाबा ने ऐसा कहा, बाबा का ये विचार है या बाबा ये चाहता है। दादी भी कहती थी, दादी ध्यान रखती है कि मुझे सहन करके चलना है। माँ भी बच्चों का सहन करती है ना, बाप भी करते हैं। मुझे सबका सब कुछ समा के चलना है। समाना भी है, सहन भी करना है। और तीसरी बात थी सुनना भी है, बड़ों को सुनना पड़ता है। हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। हम तो छोटी छोटी बात सुन के परेशान हो सकते हैं। दादी कितनी बात सुनती थी। ऐसा नहीं कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता था, हमने खुद देखा हमारे सामने दादी को बुरा बोलने वाले भी होते थे। जब कोई ज्यादा बोलता था तो हम में से कोई ना कोई उसे पकड़ के हटा देता था। सुनना, समाना, सहन करना, इससे कोई भी मनुष्य महान बनता है। क्रोध दादी में हमने देखा नहीं था कभी। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल चित्त हमेशा मुख पर रहता था, बाबा सब कुछ कर रहा है, हम तो निमित्त हैं। और बाबा से बहुत ज्यादा प्यार और समर्पणता थी, बहुत ज्यादा प्यार और समर्पणता। दादी कभी कभी बोला करती थी, दादी को लोग बाद में हंसते भी थे, स्टेज पे बैठ के बोलती थी, मेरी आंखों में बाबा समाया है, बालों में बाबा समाया हुआ है, मस्तक में बाबा समाया हुआ है, हाथों में समाया है, पैरों में समाया है, दिल में समाया है। लोग कहते, दादी आपने तो बाबा को सर्वव्यापी कर दिया। क्या मेरे लिए सर्वव्यापी हो गया? ये प्यार की भाषा है ना, अति प्यार। हम सब भी याद रखेंगे, संगम युग पर सब कुछ ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा है। जैसे मैंने एक मैसेज की बात बताई, एक दूसरे मैसेज की बात भी सुना देता हूं। मुझे पता चला इस समय अब से सृष्टि का कंट्रोल बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है। अब जो युग बदलेगा, अब जो युग बदलेगा, जो सीन बदलेंगे, जो भिन्न भिन्न घटनाएं होंगी और बदलेंगी, वो सब ऊपर से कंट्रोल्ड होंगी। इसलिए हम अपने को सौंप दें उसको, उसको सौंप देंगे, उसके अंदर कंट्रोल आ जाएंगे, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। दादी की एक विशेषता जिससे हम बहुत कुछ सीखते थे, मैंने बहुत कुछ सीखा और सबको सीखना होता है, आप में से बहुतों ने वो सीखा हुआ है। दादी जी जब मधुबन वालों का क्लास कराती थी, होती थी मास में एक बार कम से कम, हमेशा पूछती थी, हम बहुत खुश होते थे, बताओ दादी से सब संतुष्ट हो, जो संतुष्ट नहीं है हाथ उठाओ। अब कौन उठाए दादी के आगे हाथ? फिर आखिर में सबको पर्ची मिल जाती थी छोटी छोटी, जिसको जो कुछ चाहिए इस पे लिख दो, और मुन्नी बहन देती थी सब कुछ। मुन्नी बहन को वही ऑर्डर हो जाता था, 3 दिन में जिसने जो लिखा है सबको सब कुछ दे देना है। संतुष्ट करने की श्रेष्ठ इच्छा दादी कहा करती थी। और सीखने की बात, मैं केवल एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ही नहीं हूं, मैं इस सुंदर परिवार की भी चीफ हूं, मुखिया हूं। सब ध्यान रखें, कभी कभी हेड लोग ज्यादा हेडक पैदा भी कर देते हैं ना। हम परिवार के भी बड़े हैं, ये भूलना नहीं है। हमें अपने परिवार को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, प्यार देना होता है। दादी बहुत प्यार देती थी। हम तो छोटे थे जब आए, किचन का काम मिला, जानते कुछ नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था भोजन कैसे बनता है। दादी मेरे पास, क्योंकि मैं अकेला रह गया था किचन में, भोली दादी इंचार्ज थी, एक दो लोग और काम करते थे, मैं अकेला। 5 बार आती थी रोज, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसे बनाओ, ये मसाला डालना। कभी गलती हो जाए, गलती होती थी हमसे, बिल्कुल होती थी, अच्छी अच्छी गलती, पूरी दाल जला दी, लकड़ियों पे भोजन बनता था, अकेला था, पता था नहीं, दाल गाढ़ी है, ठंडा पानी डाल दिया पतला करने के लिए, चलाया है नहीं, वो नीचे जल गई। दादी आई, अब हम तो डरेंगे ना, दादी आई है, डांटेगी। 9, सूर्य दाल जल गई, ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया करो बस, और मुस्कुरा के दृष्टि देके चली गई। हम तो आश्चर्यचकित हो जाते थे, जो अंदर डर था भैया का नुकसान भी हमने कर दिया, वो भी निकल जाता था। ऐसी सुंदर कला सिखाना है, योग्य बनाना है। मेरे पास तो दादी के संस्मरणों में ये संस्मरण बहुत हैं, जो कुछ आज मैं हूं वो मुझे सिखाने में दादी जी का योगदान बहुत है। भाषण करना सिखाया, मुरली से पहले 10 मिनट दिया, बोलो। मैंने 3 बार बोला बस, और कह दिया सूर्य तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, अब क्लास कराया करो। शुरू हो गया। हमसे बोलना ही नहीं आता था, वरदानी आत्मा थी ना, बोल में भी वरदान था। मुरली चिंतन था, रात्रि क्लास हो रही थी, पूछा कल सभी को जो चिंतन करते हैं लिख के लाना है क्या चिंतन करते हैं। मैं भी लिखा, मैंने अपना टॉपिक चुना था आत्मविश्वास, 77 की बात है, आत्मविश्वास। दादी ने पहले मुझे ही कहा रात्रि क्लास में, आओ सुनाओ तुमने क्या लिखा। आत्मविश्वास पे लिखा है, 2 पेज थे, मैंने सुनाया और तुरंत मुख से निकल गया तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, ज्ञानमृत के लिए 2 लेख लिखा करो हर मास, और वो वरदान मिल गया। वरदान ही बोलते ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली दादी के व्यवहार से, उनकी धारणाओं से, उनके बोल से। मैं एक होमली घटना भी सुना देता हूं। सर्दी का मौसम आ गया, जैकेट आई सबके लिए बड़ी बड़ी होते हैं ना, जर्किन भी कहते हैं, फुल बाजू के नीचे तक। दादी ने सारे मेडिटेशन हॉल में चारों ओर कुर्सियों पर एक एक जैकेट रखवा दी और कहा जिसको जो पसंद हो, अलग अलग थी, अलग अलग रंग, लंबी चौड़ी, सबके साइज अलग होते हैं, जिसको जो पसंद हो उठा लो। अब देखो कितना खुला दिल। हमें याद है जब यज्ञ छोटा था, साधारण था, धन बहुत नहीं था, यज्ञ में 36 प्रकार के भोजन कई बार बने, खिलाने में राजई दिल। बाबा का भी यही था, वो परंपरा चलती रही। दादी का भी यही परंपरा, दादी ने पूरी चलाई। अभी हमारे यहाँ विदेश के आते हैं ना कई लोग बड़े, कहते तुम लोग इतना खिलाते हो, साधारण खाना खिलाओ, यज्ञ का खर्च होता है। हमें जवाब देना होता है बहनों, दादी की और बाबा की यज्ञ की यही रीति नीति है। यज्ञ में ब्रह्मा भोजन तो अच्छे से अच्छा खिलाया ही जाता है, सब शांत हो जाते हैं। पसंद है यज्ञ का भोजन? यहां बैठकर 20,000 की सभा में दादी पूछती थी, बताओ भाइयों क्या खाओगे, लोग हैरान। अब जो हम बता दे दादी 20,000 को खिलाएगी आज, फिर सब कहते नहीं दादी बहुत अच्छा है जो आप खिला रही हो, वो बहुत श्रेष्ठ है। देखो ये सब राजाई संस्कार थे ना। और दादी हमेशा कहती थी, हमने टीचर बहनों के आगे दादी को बोलते सुना, जितना उदार चित रहोगे, फ्राक दिल कहते हैं सिंधी में, उदार चित खुला दिल रखोगे उतना ही ज्यादा आएगा। यही नियम है इस संसार का, जो जितना कंजूसी से चलता और चलाता है उसके हाथ बंद रहते हैं, जो जितना ओपनली वेस्ट नहीं करना होता है पर सबको संतुष्ट और खुश करने की भावना से उदार चित रहते हैं, उनके भंडारे भरपूर रहते हैं। हम लोग कभी दादी को कहते थे कुमार भी बहुत उदार चित होते हैं, हम दादी को कहते थे कभी कभी बहुत लोग आते हैं दादी कभी छुट्टी नहीं मिलती, हो जाता है ना। अब हम लोग थोड़े लोग होते थे काम करने वाले, अब तो यज्ञ बहुत विशाल है, हमारे किचन में बहुत लोग होते हैं, हमारे यहाँ शांति वन में तो 10-12 हजार तो सदा ही रहने लगे आजकल, जिसको हम ऑफ सीजन कहते हैं ना, उसमें भी 10-12 हजार सदा ही बाबा के समय तो आप जानते ही हैं भीड़ रहती है। तो जब दादी को कहते थे दादी बहुत लोग आते हैं, दादी कहती थी देखो कितनी सुंदर भावनाएं, जिसके दर पर बहुत मेहमान आते हों वो बहुत भाग्यवान होता है। एक लाइन सुन के सारी थकान गायब। और भारत की तो परंपरा ही है अतिथि देवो भव। तो दादी ऐसी महान आत्मा जिसमें बहुत निमित्त भाव रहा, मैंपन जिसने आने नहीं दिया, जो बहुत ही स्वीट खुशनुमा सबको सुख देने वाली रही, उसका आज 17वां कहेंगे ना, 17 साल हो गए। मैं याद कर रहा था, सुन ले लास्ट बात, एक सुन के ही जाएं। दादी को बुलाते थे यहाँ गुलजार दादी के तन में, पहला या दूसरा साल ही था। अब ये यहाँ जो स्टेज पे बैठे थे, दादी से बहुत जिद कर दी, बताओ आप कहाँ हो, कितने बड़े हो गए हो, लड़के रूप में हो या लड़की हो, अच्छा ये बता दो जब 5-6 साल की हो गए ना, किस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम बता दो। खोज थी ना दादी कहाँ गई है, तो बताया मैं लड़के रूप में हूं, बाकी बताने को बाबा ने मना किया है। और एक बात बाबा ने उनके लिए बहुत अच्छी कही थी, अव्यक्त बाबा ने, जब पूछ रहे थे कि दादी का क्या रोल होगा, मैं उन बातों को थोड़ा गहराई से पहले से सुनता आता हूं, तो बाबा ने उत्तर दिया जैसे ही ये लड़का 2.5-3 साल का होगा, थोड़ा बोलने का हो जाएगा, ये अपने फादर को बहुत अच्छी राय दिया करेगा। मैं सोच रहा था अब तो 17 साल का लड़का हो गया, बहुत बुद्धिमान होगा, तो बुद्धिमान दादी थी, वो आत्मा ही बुद्धिमान है, ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न है, तो क्या रोल चल रहा होगा उसका अब। फिर बाबा ने बताया था किसी प्रसिद्ध घर में है वो, जिसकी राय सब जगह मानी जाती है। स्पष्ट इशारा था किसी बड़े पॉलिटिशियन के या उसके संबंध में, जिसकी राय बड़े नेता मानते होंगे, क्योंकि इस तरह ही ये युग परिवर्तन होगा, ये डेमोक्रेसी दैवी स्वराज्य में बदलेगी। तो बहुत सुंदर रोल दादी प्ले कर रही है और करेगी। हम सब दादी के शुक्रगुजार हैं जिसने विदेशों की सेवा को बहुत प्रोत्साहन दिया, भारत में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनवाए सेवा के। मैं हमेशा सुनाता हूँ 67 शिवरात्रि थी, दादी ने सभी को मैसेज दे दिया हर टीचर को 67 प्रोग्राम करने हैं एक साल में शिवरात्रि से शुरू करके, और बहनों ने कर दिए, बहुत सेवा वृद्धि को प्राप्त हुई। तो ऐसी सबको उमंग उत्साह दिलाने वाली हमारी दादी, हम आज उनके इस पुण्य स्मृति दिवस पर उनको अपने प्यार की, सम्मान की, श्रेष्ठ भावनाओं की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी धीरे धीरे शांति स्तंभ पर जाएंगे, वो प्रकाश स्तंभ पर, सब तो एक साथ नहीं जा सकते, कुछ नाश्ता करने के बाद जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो हमारी एक भावना का प्रश्न है। चले अब 1 मिनट योग करके उठेंगे सभी, 1 मिनट लाइट करो। Thank you.
जिन्हें